अस्सलामुअलैकुम। आयतों पे चलने से पहले सबक का बुनियादी ख्याल। हमारा आज का सबक जो है ये तलाक के मौजू का ततिम्मा है। ततिम्मा कहते हैं वो चीज़ जिस पे कोई टॉपिक पूरा हो जाए। पिछले कई दिनों से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरतों के नाते से निकाह, तलाक, इद्दत के मौजू को इतनी अहमियत दी कि इसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अल्लाह ताला को हमारी फिक्र हमसे ज़्यादा है। आज के सबक में हम हक महर के नाते से, जो जो लोग लिख नहीं रहे इस वक्त, वो कैसे याद रखेंगे? कलम क्यों नहीं है आपके हाथों में कुछ लोगों के? क्योंकि देखिए, ये जो चार छह लफ्ज़ है ना अभी शुरू के, ये आज की पूरी तफसीर को निचोड़ के आपके सामने रख देते हैं। तो अगर आप सेट नहीं होंगे तो फिर आप मिस करेंगे। आज के सबक में हक महर के नाते से इद्दत की मुख्तलिफ किस्मों का जिक्र है। मुख्तलिफ हालात में इद्दत मुख्तलिफ होती है। पीछे हमने तलाक की इद्दत पढ़ी, बेवगी की इद्दत पढ़ी, आज इस सबक में हमें इसमें मजीद बातें मिलेंगी। दूसरी आज के सबक की जो अहम चीज़ है वो है औरत की बेवगी की इद्दत को 1 साल से कम करके सिर्फ 4 माह और 10 दिन तक रखने की हिकमत। इंशाल्लाह आज हम वो आयत देखेंगे कि जिस पे दौरे जाहिलियत में अमल होता था, यानी इस्लाम के आने से पहले उसके ऊपर अमल किया जाता था। अगला पॉइंट आज के सबक का जो बहुत अहम है वो है नमाजों की इतनी अहमियत है कि निकाह हो रहे हो या तलाक तक की नौबत आ गई, लेकिन नमाजों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। फिर इसके अंदर एक और चीज़ जो हम देखेंगे कि हालात जैसे भी हों, लेकिन फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे के साथ एहसान करना ना भूलें। यानी गोया कि आप कह लें कि आज का सबक हमें सिर्फ कानूनी शिक्के ही नहीं सिखाता निकाह और तलाक के मामले में, बल्कि ये हमें और क्या क्या सिखाता है कि जिसमें हम अच्छे और बुरे हालात दोनों में एक दूसरे के साथ एहसान कर सकें। अब हम इंशाल्लाह आयतों को लेके चलेंगे। पहले हम आयत 236 और 37 को लेंगे, दोनों का टॉपिक एक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम अगली आयत पे चलेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। किस पर नहीं है? लिखिए मुसलमान मर्द पर। यानी यहाँ ख़ास तौर पे मर्दों को कहा गया तुम पर कोई गुनाह नहीं है। और वो कौन से मर्द हैं खास तौर पे जिसका तذکرہ आगे होगा? पहले ये देख लेते हैं कि गुनाह किस चीज़ पर नहीं है। तो फरमाया कि इस बात पर गुनाह नहीं है कि इन तल्लक्तुमुन निसा, कि अगर तुम औरतों को तलाक दे दो। किन हालात में? मालम तमस्सू हुन्ना, कि तुमने उनसे सोहबत ना की हो। यहाँ नंबर वन लिख लीजिए। दो तीन बातें इसमें। पहली बात यह है कि बाज़ औक़ात सिर्फ निकाह होता है, रुख्सती की नौबत नहीं आती, और बाज़ में हालात कुछ इस किस्म के बन जाते हैं कि उस निकाह को तोड़ना लाजिम हो जाता है तो इसकी इजाज़त है। ला जुनाह से बात शुरू की गई। यहाँ से आप देखिए कि हकूकुल इबाद और इंसानी मामलात में लफ्ज़ गुनाह और सवाब का आना हमें क्या बताता है? ये बताता है कि नमाज पढ़ने का नाम ही सिर्फ दीन नहीं है, या हम सिर्फ रोज़ा रख के ही सवाब नहीं ले सकते, या हम सिर्फ गुनाह अल्लाह ताला के मामलात में ही नहीं करते बल्कि इंसानी मामलात में भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। और हकीकत ये है जिस चीज़ पे दिल दिन ब दिन और जमता जा रहा है कि अल्लाह ताला के मामले में तो बहुत आसान है नेक होना, लेकिन इंसानी मामलात में नेक होना बहुत मुश्किल है। क़यामत के दिन यकीनन ज़्यादा लोग जो हैं वो इंसानी मामलात की वजह से फंसे हुए होंगे और लंबे लंबे जो उनके हिसाब किताब होंगे। तो कहा कि अगर कभी तलाक देने की नौबत आ जाए तो फिर तुम उस वक़्त दे सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। किस औरत को? जिसको तुमने अभी छुआ नहीं। और पहली सूरत क्या थी? कि उनका हक महर मुकर्रर हुआ था। ठीक है, मैं अपने लफ्ज़ों में दोहराती हूँ। निकाह हुआ एक लड़के और एक लड़की का, और वहाँ किसी ख़ास हक महर का तذکرہ हुआ। मिसाल है कि 10,000 रुपये, 10,000 पाउंड, $5,000, कुछ भी तذکرہ हो गया था, ख़त्म हो गई बात। अब तलाक हो गई। ठीक है, अब तलाक हो गई तो पहली बात है कि तुम दे सकते हो। अब बाद में होना क्या उसको हम आगे जाके देखेंगे। इतनी बात करो क्या? वमत्तेउहुन्ना, और फायदा दो उनको, अलल मोसी कदरुहु, और फायदा दो इनको दौलतमंद अपनी हैसियत के मुताबिक दे, व अलल मुकदीरी कदरुहु और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दे। यहाँ आप देखिए कि जो ये लफ्ज़ था ना ला, ये मैंने अभी बोलने में कुछ गलती की है मुझे लगता है, ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक तुम नुन निसा मालम तमस्सुहुन्ना औ तफरिदु, तो औ से पहले भी माँ है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप खाना ना खाएं और पीना भी, यानी दोनों में सूरत क्या है कि ना तो रुख्सती हुई और ना हक महर हुआ मुकर्रर। ये कह दिया कि कुछ भी दे देंगे, यानी कोई खास उसकी अमाउंट नहीं हुई और उसमें तलाक हो गई। फिर दोहराती हूँ, निकाह हुआ, हक महर की एक खास अमाउंट नहीं हुई, बस ये कह दिया कि जो भी वक्त का रिवाज है वो दे देंगे। कोई उसके खानदान की किसी औरत को मिसाल ले लिया, कुछ भी कर दिया, कहा कि ठीक है, कतई नहीं हुआ, बस कहा देंगे। अब तलाक हो गई तो अब किया क्या जाए? तलाक की सूरत में इस औरत को क्या मिलेगा? वह मत ते हुन्ना, और फायदा दो इनको। हुन्ना से यहाँ कौन मुराद है? ऐसी औरत जो बगैर रुख्सती के तलाक पा रही है, ठीक है, वो औरत जिसको रुख्सती के बगैर ही तलाक मिल रही है, इसके बारे में क्या करो? मत देऊ हुन्ना, उनको कुछ फायदा दे दो। कितना दे दो? अलल मूसी कदरुहु, अगर तलाक देने वाला शौहर दौलतमंद है, अमीर है, करोड़पति है, मिलियनेरियन है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, जितना कमाता है उतना दे दे, कोई हरज की बात नहीं है। और वह अलल मुकतिरी कदरुहु, दूसरी सूरत है कि हैंड टू माउथ है बेचारा, सफेद पोश है, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे। ये है क्या? मताम बिल मारूफ, फायदा उठाना है मारूफ तरीके से, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अच्छे तरीके से फायदा दे दे, हक्कन अलल मुहसिनीन। ये बात लाजिम है मुहसिनीन पर, जैसे हक होता है ना, राइट्स हैं, ये मेरा राइट, ये आपका राइट है, ये हक है ईमान वालों का दूसरों पर। कैसा हक है? ऐसी क्या बात हो गई? यहाँ एक केस पूरा हो गया। आज का सबक पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि किसी लॉयर के पास चंद केसेस आ रहे हैं कि ये तल्लाक का केस है, ये अब इसको क्या दें और ये वो है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा खूबसूरत असूल दे दिया कि तखाइफ का तबादला सिर्फ अच्छे हालात में ही नहीं, नापसंदीदा हालात में भी दो। एक लड़की जब एक लड़के के नाम से मंसूब हो जाती है ना कुछ तो नुकसान उसको होता है उस रिश्ते के टूटने पे। यहाँ आज आप पढ़ेंगे और आपको अल्लाह ताला पे बड़ा प्यार आएगा, मुझे तो बहुत आता है। जितना किसी औरत को या लड़की को, औरत कहूँगी तो ज़रा बड़ा उम्र का जहन में आता है लफ्ज़, इसलिए लड़की बेहतर है क्योंकि अमूमन निकाह लड़कपन में हो जाता है, एक लड़की का सिर्फ निकाह होके टूटा, इतना नुकसान नहीं हुआ उसका। किसी के घर जाके चाहे एक दो दिन रह के आ जाएगी ना, नुकसान बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी इस औरत का इतना नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ निकाह हुआ टूट गया, कोई रीजन भी हो सकती है, क्या किया जाए? इसको महरे मिसल कहते हैं, मत देऊ होना, कुछ भी दे दो, अपनी मर्जी से दे दो, कुछ भी दे दो, कैसे करो। अब देखिए कि यहाँ इस्लाम कैसा खूबसूरत मिजाज सिखाता है कि जब तुम किसी को छोड़ रहे हो तो उस छोड़ने का कुछ ना कुछ उसको कंपनसेशन दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे हसन ने एक दफ़ा अपनी बीवी को तलाक दी, यही केस था या कोई भी था, 10,000 दिरहम उसको तोहफे में दे दिए तलाक देते हुए कि तुम जा रही हो तो तोहफे में ये 10,000 दिरहम ले लो। जब ये मनी उस औरत के पास पहुंची, और 10,000 बहुत बड़ी रकम थी, चांदी के सिक्के होते हैं, उसने उन पैसों को देकर एक शेर बोला जिसका एक मिसरा क्या था कि मताउन कलील मिम हबीबी मुफारिक, कहने लगी इतने प्यारे दोस्त की जुदाई के मुकाबले में तो ये बड़ी छोटी रकम है। इस जुमले को सुनकर जब इन तक ये पहुंचा तो हजरत हसन रोने लगे कि उस लड़की ने मेरे जाने को या मुझसे छुटने को इतना दिल से लगाया कि मुझे हबीबी मुफारिकिन कह रही है। कहने लगे कि अगर मैं इसको 3 तलाकें ना दे चुका होता तो मैं इससे रुजू कर लेता। हमारे यहाँ आप देखिए कि अमूमन ऐसे वक्तों में क्या होता है, हम लोग बिल्कुल कहते हैं लो जी थूक कर चाटे, लो जी हम कोई गिरे पड़े हैं, खुद साख्ता बातें, दिस एंड दैट बातें। तो जिस तरह शादी के मौके पे आप किसी को मुंह दिखाई देते हैं ना, तो इस तरह तलाक के मौके पे किसी को कुछ और भी दिया जा सकता है। ये इस्लाम का मिजाज है, इस्लाम यही चाहता है। जब कोई अच्छे हालात में किसी के साथ अच्छा होता है ना, तो नथिंग इज न्यू, इट्स फितरत, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम बुरे हालात में किसी के साथ अच्छे होते हैं ना, तो फिर हमें समझ आती है कि ये इंसान का अखलाक क्या है। हम अपने घरों में, अपने खानदानों में किसी एक तलाक के मौजू को ख़त्म ही नहीं होने देते, ऊपर से बातें कर करके। आप देखिए कि जब ये थोड़ा बहुत पैसा ऊपर मिल जाता है, तो ये दिल को थोड़ा सा ठंडा तो कर देता है ना। हमारे यहाँ एक तो बेटी घर आती है, दूसरा पता चलता है अब उसका जहेज भी नहीं आ रहा, तीसरा पता चलता है कि उसके चूड़ियां भी उतार ली, और चौथा ये कि उस पर तानों की और इल्जाम की बौछार है ताकि वो आगे ना जाए। तो जिसको आप कहेंगे जख्म खुर्दा को हम और भी ज्यादा करके रखते हैं। ठीक है, ऐसे रिश्तों में बाज दफा दिल दुखता है, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन याद रखिए कि अपने दोस्तों से तो सभी अच्छे होते हैं, मैके से भी सब अच्छे होते हैं, लेकिन ससुराल, मुखालिफ और ना कदरों से मोहब्बत रखने वाला असल में मुत्तकी होता है। यक तरफा मोहब्बत, जिसको आप कहें कि वन साइडेड लव, मत उम्मीद रखें कि कोई इसके बदले में मुझे तारीफ का एक बोल भी बोल दे। ये मिजाज इस्लाम हम सब के अंदर लाना चाहता है। मुखालफतों के बावजूद खैर ख्वाह रहें, यकीन रखें कि आप अगर अल्लाह के लिए ये करेंगे ना, तो आपकी एक मुस्कुराहट भी जाया नहीं जाएगी। जो आप ऐसे वक्त पे एक्सेप्टेंस के लिए बोल देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। शैतान करीब के रिश्तेदारों में बहुत सारी गलतफहमियां डालता है। आज अगर आपको कोई छोड़ रहा है, खुद अपने किसी गुस्से में, माँ बहन के किसी के कहने पे, या कोई और सरकमस्टांसेस की वजह से, बहुत सारी तलाकें होती हैं, ये बात आप लिख लें। आज के दौर में जितनी तलाकें होती हैं ना, ये सरकमस्टांसेस की वजह से होती हैं। अब मैं उर्दू में इसको कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करूँ। हालात ऐसे बन बना दिए जाते हैं कि दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन फिर तलाक हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, जो पीछे हमने बात की, बाज़ दफ़ा गलत फहमियाँ हो जाती हैं। अकेले में अब लड़के से बैठ के बात करें ना, तो आप कहेंगे ये सच है, बड़ा अच्छा है, संजीदा है, सीरियस है। आप अकेले में लड़की से बैठे, तो आपको अखड़ से अखड़ लड़की भी बड़ी अंदर से नरम छुई मुई दिखेगी कि इसको तलाक कोई नहीं लेनी, लेकिन फिर तलाक हो जाती है, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे बन बना जाते हैं। और उसमें बहुत बड़ी वजह ये मोहसिन बनना नहीं है। अगर हम अपनी बच्चियों को मोहसिना की ट्रेनिंग दे के भेजेंगे ना अपने घरों से, इंशाल्लाह आप देखिएगा वो लेने वाली नहीं बनेगी, देने वाली होंगी। वो छोटी सी बात पे मेरी बात नहीं मानी, मुझे अहमियत नहीं देते घर में, मेरे से काम बहुत कराते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझे यहाँ नहीं बिठाया, वहाँ बिठाया, इन बातों पर तलाकें हो रही हैं, कैन यू बिलीव? सिर्फ दुल्हन के इधर से उधर बैठने बिठाने पे ससुराल नाराज हो जाता है, इतनी बातों पे बहुत। यानी आप देखिए कि सोसाइटी में आज जिस दुनिया में, मैं जब भी कोई ऐसी बात सुनती हूँ और मेरे जहन में आती हैं कुछ बातें, तो मैं सोचती हूँ कि असल में तो ये खुद को बूझना है। सिर्फ इस वजह से एक शादी टूटने वाले हालात बने, देखिए जब दिल में दरार आती है फिर बातें तो ऊपर और बनी जाती हैं, लेकिन वो पहली बात है ना, मिजाज टेढ़ा होता है। सिर्फ इस वजह से कि जब बारात गई थी, तो लड़की के मैके वालों ने हमारी ज्यादा इज्जत नहीं की, किसी वक्त उनको ऊपर नहीं बिठाया, किसी को नीचे नहीं बिठाया, किसी ने मूवी मैन को पकड़ लिया उसको डांट दिया, किसी ने हमें पूछा नहीं आके टेबल पे कि आप खाना खाएं, हमें अहमियत नहीं दी। जब कोई ये कहते हैं ना कि हमें अहमियत नहीं दी, तो उस वक्त आप इसके अंदर छुपा हुआ अना रब्बुकुम अला वाला जुमला सोचें, खुद को बड़ा, लड़के की माँ, लड़की की माँ, फिर हम भी लड़के की माँ और उसकी बहनें, हम भी तो उनको एक अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, अलग से कुर्सियां रखी, हम देते इज्जत के लिए, ये जी रिजर्व है उनके लिए। बड़ी अच्छी बात है अगर आपने इसको सिर्फ एक अपने सोच से किया, लेकिन आपको तो कि कितने झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक तो दूसरे ऑडियंस में से कोई नासमझी में आके बैठ जाए, तो फिर उनको उठाते हैं, उठे उठे ये दूल्हा वालों की कुर्सी है, ये अम्मा की कुर्सी है, ये अब्बा की है, और अगर वो सारे अपनी जगहों पर बैठ गए, तो उस दिन उनके अंदर हवा कितनी भर जाती है। अब पहली दफ़ा तो आपने उनको ऊंची कुर्सी भी दे दी और उनको बहुत कुछ दिया, शादी के दूसरी दफ़ा में जब आएंगे, तीसरी दफ़ा आएंगे, दुल्हन को लेने आएंगे कभी, अब आप वो प्रोटोकॉल नहीं देंगे, कहेंगे देखना पहले बड़ी इज्जत देते थे अब नहीं देते, अब बदल, फिर वो लड़की को ताने, तुम्हारी अम्मा ने हमारी इज्जत नहीं की, तुम्हारे उसमें नहीं की, तो याद रखिए कि इसमें एक ही चीज़ आपको मुझे बचाएगी, मोहसिन बनना, किल विद काइंडनेस। बस इन रिश्तों में तो एक ही इलाज है कि आप किसी की किसी बात को पीछे ना करें और ख़त्म हो जाए। अब यहाँ ये बात जब आती है तो हमारे जहन में एक और सवाल भी आ जाता है, और वो क्या है कि जख्म अगर किसी को लगे ना आपकी वजह से, तो उस पर मरहम भी आप रख दें। ये पैसे कुछ नहीं होते, शौहर बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाए, हकीकत में ये पैसा उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन कम अज कम कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि भाई ये तो कहा जा रहा है इतना दे दो, तो आपके जहन में वो 32 रुपए शरई हक मेहर भी घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी डिटेल की यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ बात है तो करनी भी जरूरी है कि 32 रुपए शरई हक मेहर, इसकी तो इस्लाम में कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब पूछा गया कि आपकी बीवियों का हक महर क्या होता था, तो उन्होंने चांदी की एक ऐसी मिकदार बताई कि हमारे असलाफ में, खास तौर पे बरसीर पाको, इनमें ये 32 रुपए चलते हैं ना, जिस दौर में उस उलमा से वो सवाल पूछा गया, उस वक्त उस चांदी की कीमत 32 रुपए बनती थी। सच बात है, ठीक है। 500 उकिया व नश, ये दो लफ्ज हैं, यानी अल्लाह के नबी अपनी बीवियों का हक में रमूमन क्या करते थे, 500 उकिया चांदी और नश। पूछा आयशा से कि नश क्या है, तो कहा आधा, यानी 550 उकिया चांदी। अब जिस दौर में बरेसगीर पाको हिंद में अरबी से उर्दू तफासीर चल रही थी, उस दौर में इतनी चांदी की यही मिकदार थी। उस दौर के उलमा ने अगर कह दिया 32 रुपये, तो बिल्कुल ठीक का, अगर वाकई पूरे उन्होंने वर्ड टू वर्ड करना था कितने पैसे कितनी पैनिया। हुआ क्या, उस दौर वालों ने तो उस दौर के लिए एक दे दिया फतवा, अब आने वालों ने उस मिकदार चांदी को तो भूल गए और 32 रुपए याद रह गए। जिस दौर में ये फतवा दिया गया, उस दौर में 32 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी, और आज 32 रुपए क्या है, 32 रुपीज क्या है आपके इस मुल्क के हिसाब से, अगर आप कह लें तो फ्यू पेनीज हैं, शायद 30 पेनीज बनती होंगी। 30 पेनीज में कोका केन आता है, पानी की बोतल भी नहीं आती। तो क्या एक औरत को जुदा होते वक्त आप 32 पैनी दे देंगे? देखिए कि ये जो हम कहते हैं ना कि औरत का कुछ बन जाए, गुजारा हो जाए, उसका कुछ दे दें, ये भी झूठ है। कभी भी इस्लाम इस तरह की पेशबंदियों पे नहीं घर बसाता कि इसको कुछ दो दिलाओ ताकि इसका काम हो जाए। ये सिर्फ एक किस्म का अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से, आप कह लें कि हक महर क्या है, एक टोकन मनी है। आप घर बड़ा खरीदते हैं ना, तो उस घर से पहले आपको एक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है ना, ताकि लोग समझें कि आप सीरियस हैं। आप कहते हैं मुझे ये घर खरीदना है, वो कहते हैं लाओ 10,000 पाउंड दे दो टोकन मनी पे। आप देते हैं, जिस दिन देते हैं उनको पता है डील पक्की है, वरना आप क्या कहते हैं कि मैं तो इस पूरे घर को खरीदूंगा, इसका खर्चा उठाऊंगा आगे से, ठीक है। इसी तरह शादी के मौके पे लड़का हक महर के तौर पर एक डाउन पेमेंट देता है कि आई एम सीरियस, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, टाइम पास नहीं कर रहा, मैं कोई भंवरा नहीं हूँ, मैं कोई इधर घूमने फिरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं इस लड़की की अब सारी जिंदगी के लिए टेक केयर करूंगा, और ये उसका एक छोटा सा मामला था। तो लिहाजा जो भी हक महर होता है वो हैसियत के मुताबिक होता है। अब सवाल ये भी पैदा होता है ना, कौन कितना हक महर रखे? सिंपल सा असूल है, जितना लड़का कमाता है, अगर उसकी कमाई हजारों में है तो हक महर हजारों में रख ले, सैकड़ों में तो सैकड़ों रख लीजिए, लाखों है तो लाखों में रख ले। इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अल्लाह सुबहाना ताला ने रख दिया ऐसे बातें। और यहाँ एक और चीज़ हक्कन अलल मुहसिनीन के अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने बता दी कि एक दूसरे पे एहसान करो, तारीख बाप था जिंदगी का, इसको बंद कर दो, तफसीलात सुना सुना कर जख्मों को ताज़ा ना करो। हमारा हाल पता क्या है कि जरा से चंद दिन के वक्फे से जब जख्म पर क्रीन आने लगता है ना, हम जाकर उसको फिर छील देते हैं। और आप देखिए कि जब जख्म भरने के दिन होते हैं तो ख़ारिश बहुत होती है, कभी भी आपको कहीं जख्म आया होगा, जब ख़ारिश होती है ना तो कहा कंट्रोल करो, वरना जख्म कभी नहीं भरेंगे। बिल्कुल इंसानी मामलात में फरीके मुखालिफ की बातें करना, बुराइयां करना, रोना, फिर खानदान के एक एक बंदे को जाकर सुनाना और कहना नहीं मैं अपनी सफाई पेश कर रही हूँ, कोई कहता है मैं अपना दिल ठंडा कर रही हूँ, और रिश्तेदार भी माशाल्लाह चस्के लेके बातें सारी सुननी चाहते हैं, वैसे कहते हैं नहीं हम आपके साथ मुखलिस हैं, असल में घर जाके कहते हैं अच्छा होगा इसके बाप ने भी किया था ना अपनी माँ के साथ, तो आज इसको भी बदला मिल गया। इतना लोग जुल्म करते हैं आपको पता है, कभी किसी की बच्ची के साथ 19-20 हो जाए ना, तो लोग पीछे से उसके माँ बाप पे जाते हैं, कहते हैं इसके बाप ने भी किया था ना अपनी बीवी के साथ, तो अब आज उसको सजा मिली है। तो बीवी को किस बात की मिली, वो भी तो माँ है ना। तो जिंदगी के सफर में आगे देखें, आप देखिए कि आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा मिरर होता है ना, विंड स्क्रीन, कितनी बड़ी होती है, पूरी गाड़ी सामने जितनी भी चौड़ी है वो पूरी की पूरी शीशे की होती है। क्यों नहीं करते कि पूरा फ्रंट जो है वो लोहे का बना दें और बस इतनी सी एक बीप सी जगह रख दें जिसमें ड्राइवर देखे, नहीं चलेगा ना। इसके बरक्स आप देखिए कि बैक मिरर कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा। अगर बैक मिरर भी फ्रंट मिरर जैसा हो जाएगा तो एक्सीडेंट लाजमी है। यही जिंदगी में असूल है कि आगे चलो, जब कभी कोई अपना बिगाड़ लेकर आपके दरवाजे पे आ जाए, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका कोई भी, तो उसको कहो कि बेटा पीछे नहीं, आगे देखो, जिंदगी के सफर में आगे देखो, अपनी इसलाह करो। और थोड़ा सा ठोकर लगती है ना तो दोनों में से जो बंदा भी होता है ना गलती वाला, उसको समझ आ चुकी होती है। हो सकता है शौहर ही बहुत तनकीद करते हो सकता है गुस्से वाले हो, जब बीवी 4 दिन दूर होती है समझ आ जाती है कि भी काम ठीक नहीं किया मैंने, फिर अल्लाह ताला दिल में डाल देता है। दूर जाके बीवी को भी शौहर की कदर आती है, उसको पता चलता है ये जो हर वक्त ग्रोसरी घर में आती थी, जो खाना बगैर मांगे आ जाता था, जो बिल कभी दिए नहीं। आप सच बताएं, हम अल्लाह ताला सबके मर्दों को सलामत रखे, कि आपको पता है कि किराया कब जाता है घर से, बिजली का बिल कौन जमा कराता है, गाड़ी में पेट्रोल कितने का आता है, आपको पता है? मुझे तो जीरो पता है, हमें नहीं होश। अल्लाह मर्दों को सलामत रखे, हम क्यों अपनी जान पे ये बोझ लेके बैठे। ये तो वो करें जिनके ऊपर कोई नहीं है करने वाला। तो जब ये सारे काम खुद बखुद ऑटोमेशन में चलते हैं तो हमें लगता है ये काम ही नहीं है, और जब खुद बिलों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है तो मिलेगा क्या। तो बहरहाल यहाँ आखिरी बात करके हम आगे चलते हैं, और वो क्या है कि देखिए बार दफा जिंदगी में मसाइल आते हैं, मसले होते हैं कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोग उस छोटे मसले को फेस ना करने की वजह से बड़े मसले खड़े कर लेते हैं। शौहर के घर में थी, खराब थी, गुस्से वाला था, मसला था, लेकिन था ना। जब एक औरत उधर से निकल के अपने ऊपर एक और ऐसा मामला करती है तो वो तो अब वो छोटा मसला बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे मामलात में अगर एहसान होगा तो इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत सारी खैरियत भी होगी। तो अल्लाह ताला ने ये बात दे दी। अब आगे देखिए दूसरी चीज, सेकंड केस जिसको अब हम देखने वाले हैं, वइन तल्लक्तुमुहुन्ना। अब इसके साथ नंबर 2 लिख लें, और अगर तुम इनको तलाक दो, किनको, बीवियों को, मिन कबली, इससे पहले, अंतमसूहुन्ना, कि तुमने इनसे ताल्लुक कायम किया हो, लेकिन वकद फरतुम लहुन्न फरीदा, यहां पे कॉमा लगा दें, ये खत्म होगी एक बात, और अगर तुम तलाक दो अपनी बीवियों को और तुमने अभी उनसे ताल्लुक कायम नहीं किया, यानी रुख्सती से पहले तलाक दे रहे हो और हक मेहर मुकरर हो चुका था, ठीक है, समझ आ गई बात, पहले से फर्क क्या है इसमें। उधर हक मेहर का कीमत नहीं बताती, लेकिन यहाँ पता है, लेट्स सी 5,000 पाउंड है हक मेहर है, तलाक हो रही है तो क्या किया जाए, फनिस्फु मा फरतुम, बस आधा दे दो उसका जो तुमने फर्ज किया, ठीक है, 5,000 था तो उसके 2,500 दे दो। क्यों, वही बात इधर भी है कि बीवी उसके घर गई नहीं, उसके साथ रही नहीं, इतनी बात उसके ऊपर नहीं आएगी कि ये लड़की में कोई ऐब था जो लड़के ने इसको छोड़ दिया, तो पूरे की बजाय आधा हक मेहर दे दो, मर्द दे दे। अच्छा, जब रही नहीं तो आधा क्यों, ये मर्द की तरफ से कंपनसेशन है। अच्छा, मर्द को आधा वापस क्यों मिल रहा है, ताकि अगली शादी करने के लिए भी तो कुछ पैसे जमा करे। जब तक हम इस्लाम का वो मेयार नहीं समझेंगे ना निकाह का, हमें ये बातें नहीं समझ आएंगी। तो चंद जुमलों में दोहरा लीजिए कि इस्लाम में शादी का पूरा खर्चा मर्द के जिम्मे होता है। इतनी मुश्किल होती नहीं है शादी जितनी हमने बना दी है, ऑन द स्पॉट निकाह हो जाता था, उन्हीं कदमों पे लड़का आता था, उसको कोई चाहिए, कोई मेरी शादी कर दें, अल्लाह के नबी को किसी की बेटी के बारे में पता होता था, या किसी ने खुद भी कहा होगा, अगर मिसाल है कहने की, तो वहां नौबत ही नहीं पड़ती थी या पड़ती है। आर्टिफिशियल सोसाइटी में जब जीता है ना बंदा, तो फितरत के खिलाफ जीता है। वहां अगर किसी का कोई नहीं होता था, वो सीधे आके अल्लाह के नबी को कह देते थे, अल्लाह के नबी मुझे नजर में रखिएगा, कोई निकाह मेरे लिए हो सके। एक औरत आती है कहने लगी, अल्लाह के नबी मैं अपना आप आपको हिबा करती हूँ, मतलब क्या था कि मेरे बारे में आप जो फैसला करें, अब वो बेचारी को अकेली तो अकेली होगी ना, उस दौर में तो ये रेवोल्यूशन चल रहा था कि अकेली औरतें मुसलमान होती थी, फैमिली मुसलमान नहीं थी। इतने में एक मर्द आ गया, गरीब था और कल्लाश था। आपने पूछा तुमने निकाह करना है, कहा जी। कहा क्या इस औरत से निकाह करने पे राजी हो, कहा ठीक है कोई हर्ज नहीं। वो इतने आर्टिफिशियल ख्वाब तो देखे ही नहीं होते थे जिनको पहले मैच करें। पहले तो आप देखिए कि लोग शादी होती थी तो मैचिंग करते थे ना, लड़का खूबसूरत है तो लड़की खूबसूरत तो फला। अब तो लोग डीएनए तक कर पता नहीं उनके स्टार्स तक मिलाते हैं, तो फिर देख लीजिए जरा नतायज कितने को खूबसूरत निकल रहे हैं। कजन मैरिज इसलिए नहीं करनी कि बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप पैदा होंगे, पहले होते थे। 98% हमारी फैमिलीज में आज से कोई 50 साल पहले कजन मैरिजेस थी, चचा के ताया के एक ही घर से उठा के नीचे से उठा के ऊपर भेज देते थे, बहुत कम लोग बाहर करते थे। हुए कभी हैंडीकैप बच्चे? ये आजकल की पहली सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। खैर उन्होंने कहा ठीक है, कहा हक मेहर के लिए है कुछ तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि नहीं। कहा जाओ देख के आओ। घर गया वो शख्स, वापस जब आया तो अल्लाह के नबी को कहने लगा, अल्लाह के नबी घर में कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए एक औरत भी तो ये मामला देख ही रही है ना, जिसको पता है कैसा शख्स मेरे से निकाह का ख्वाहिशमंद है जिसके घर में हक मेहर में देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कोई लोहे की अंगूठी ही मिल जाती, कहा वो भी नहीं है। मायूस होके जाने लगा तो उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर माजमा का मिनल कुरान, तेरे पास कुरान में से क्या है? कहा फुलां फुलां सूरतें याद हैं, बाज़ रिवायतों में आता है कि सूरह बकरा का तस्करा किया उसने, बाज़ जगह कुछ और। कहा अच्छा चलो इस बात पे राजी हो ये औरत, अगर ये मर्द तुम्हें ये सूरतें सिखा दे यानी तुम्हारा उस्ताद बन जाए और उसकी मुआवजे में तुम मुझसे ये सीख लो तो क्या तुम इससे निकाह करना चाहती हो? कहने के अल्लाह के नबी ठीक है। वो भी नहीं थी कि लैंड क्रूजर है या मर्सिडीज है या किधर जाएगा और वलीमे का जोड़ा कहाँ से आएगा और हनीमून प्लान कौन सा होगा। किन तरह ये बातें कड़वी लगती हैं हमें, लेकिन ये रियलिटी। आज घर जो टूटते हैं लड़कियां क्यों खुश नहीं रहती, वजह क्या है कि ड्रीमिंग बहुत है। फिल्मों में हीरो हीरोइन को देखा हुआ, उनके लाड नखरे देखे हुए, तो इस तरह से हमने शादी को आज एक बिल्कुल खेल खिलौना बना दिया। शादियां हम करते नहीं हैं, हम शादियां सेलिब्रेट करते हैं। बात कहते हुए जो मेरे जहन में चीज़ आ रही है वो ऐसी है कि जैसे देखें आपकी अपनी ज़मीन है ना, आप उस पर अपना घर बनाएं, आप उसको खोदें, नरम करें, बुनियादों को खूब मजबूत करें, फिर उस पर घर बनाएं। घर चलेगा, बहुत साल तक चलते हैं घर, आप सब देखते ही हैं। कोई शीशे का फ्लोर ले, हो भी अपना ना, किसी और का ही मांगा हुआ, उसके ऊपर अपना घर बनाने लगे। शीशे की बुनियादों पर घर नहीं जमते, लोहा और फौलाद डालना पड़ता है। जिन रिश्तों में शादी की बुनियाद लोहा और इस तरह की सॉलिड बेस होती है ना, वो शादियां चलती हैं। दुख सुख में मियाँ बीवी साथ रहते हैं। और जो ये शीशे जैसी जिंदगी है, लव एट फलां और लव और आई लव यू और मेरे साथ पढ़ता और मेरे साथ पढ़ती, वो ज्यादा दिन नहीं चलते, खत्म हो जाते हैं वो रिश्ते। शादी से पहले खत्म हो जाए तो बल्कि बेहतर है, शादी के बाद खत्म होंगे तो ज्यादा खराबियां शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि ऐसा हो सकता है, रुख्सती नहीं हुई, हक महर रखा था तो मर्द उसको आधा दे दे। मा फरत तुम, जो तुमने फर्ज किया। यहां से भी देखिए मा फरत तुम लफ्ज बता रहा है कि हक महर कितना होगा, इसका फैसला मर्द करेगा, लड़की वाले मुतालबा नहीं कर सकते। ये भी एक और खराबी आज हमारी सोसाइटी में, लड़की वाले मुतालबे करते हैं, अच्छा जी क्या देंगे मेरी बेटी को, घर लगाएं इसके, लगवा ले, चले लगा देता है कोई 4 लाख का घर लगा दे तो क्या होगा, बस जाएगी बेटी आपकी? घरों से बेटियां नहीं बसती। आप उनके नाम 50 तोले सोना लगवा लें, सोना तो हो सकता है एंड पे उसको मिल जाए लेकिन शौहर नहीं मिलेगा। तो घर शर्तों पे नहीं चलते, ना फतवों पे चलते हैं, ये तकवा पर मुहसिन बनने पे चलते हैं। कुछ लो कुछ दो, अपने अंदर मिजाज में नरमी लाओ। और ये जो हवा भर जाती है ना दिमागों में कि हम बड़ी चीज है, हम बड़ी जगह से पड़े हुए हैं, लड़का अगर डॉक्टर हो तो माँ का ही दिमाग बहुत ऊंचा हो जाता है कि मेरे बेटे की तो वैल्यू बहुत है, ही इज समथिंग, फिर उसको लड़की कहाँ पसंद आएगी। और जो लड़की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की पढ़ जाए फिर उनका भी दिमाग होता, कहते हैं जी हम यूनी में जा रहे हैं, तो नतीजा क्या है कि अब हम किसी आम हालात वाले के साथ तो नहीं जियेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मा फरत तुमने फर्ज करना है कि अपनी बीवी को क्या दोगे। क्यों? इसलिए कि हर मर्द खुद अपनी हैसियत जानता है, बीवी वालों को इतना नहीं पता होता। हाँ मगर अब ये सूरत क्या थी, कानून क्या था, आधा देना है, लेकिन एक्सेप्शन देखिए, और आपको हमारे दिन की खूबसूरती दिख रही होगी, हर चीज में रिलैक्सेशन। ये नहीं कि एक सीधी लाइन खींच दी और कहा बस इस पे चलो, नहीं चल सकते ना, कोई दो लाइनें खींच दे और कहे इसके बीच में कदम रख लो तो पॉसिबल है, थोड़ा सा पाँव इधर नहीं उधर चल पड़ेंगे। और अगर एक पतली लाइन और को किस से बाहर पौना है तो चलना तो ऊपर हो जाए, इसीलिए कहा इल्ला याफून। हाँ मगर वो औरतें माफ करते हैं, कौन, जिनको तलाक मिल रही है, क्या मादा भी नहीं लेती। जब हम इसकी बीवी नहीं बनी, जब हमने इससे कुछ फायदा नहीं लिया दिया, तो मैं नहीं लेती भाई आधा भी, कोई हर्ज नहीं। ओ या फुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या फिर वो मर्द जिसके अख्तियार में उकदा निकाह है, वो फराख दिली से काम ले, मुराद क्या है कि पूरे का पूरा हक मेहर दे दे, तो भी जायज़ है। औरत कहती है मैं आधा भी नहीं लेती, मर्द कहता है नहीं मैं पूरा दूंगा, कानूनी बात क्या है आधा दो, और इखलाक की बात क्या है कि पूरा ही दे दो। और औरत अगर मुहसिना बनती, उसको पता है इस लड़के ने फिर कहीं शादी करनी है तो फिर पैसे जमा करेगा, तो वो कहती है नहीं मैं कुछ भी नहीं लेती। ये है अल्लाह ताला की तरफ से कि वला तंसवुल फजल बैनकुम। इंसानी मामलात में जब ये सोसाइटी कायम होगी तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक जितनी बात हुई है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा चंद पॉइंट्स में लिख लें तो आपको इंशाअल्लाह ताला बात याद रहेगी। मेहर के एतबार से चार किस्में हैं, ठीक है। नंबर एक, हक मेहर मुकरर हुआ, खलवत हुई, जैसे आम हालात में होता है, आगे आएगा तस्करा, यानी जैसे आम तौर पे हक मेहर भी होता है, फिर वो शौहर बीवी बन के रहते हैं साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल, जितना भी हुआ, फिर तलाक हो गई, तो मर्द बीवी को पूरा मेहर देगा। हमारे यहाँ लफ्ज मेहर के साथ ही बदमजगी शुरू हो जाती है, कितनी औरतें, उनको तो ये तक नहीं पता कि हमारा हक मेहर कितना था। और बाज़ सोसाइटीज इतनी जहालत पे पलती हैं कि उनको ये नहीं पता कि बीवी हक मेहर मांग सकती है, कोई मांगे तो वो सोचते हैं कि हक मेहर का मांगना ऐसे ही जैसे तलाक मांग रहा कोई, ठीक है। तो आम हालात बिल्कुल सिंपल है, शादी भी हुई, साथ रहे भी, हक मेहर भी मुकर्रर था, अगर खुदा ना खासा तलाक की नौबत आ गई तो मर्द को पूरा हक मेहर वापस करना होगा। सेकंड सूरत, हक मेहर मुकर्रर हुआ लेकिन रुख्सती नहीं हुई, ठीक है, तो निस हक मेहर देना होगा, हक मेहर जितना था उसका आधा देना, जो भी हमने पढ़ा। तीसरी सूरत क्या है, ना हक मेहर हुआ, ठीक है, मुकर्रर, और ना खलवत हुई। और खलवत में भी कहते हैं कि खलवत से मुराद ये कि शौहर बीवी का ताल्लुक किस तरह समझा जाएगा कि इतना वक्त शौहर बीवी को साथ मिल जाए कि जिसमें अमूमन ये ताल्लुक कायम होने के चांसेस होते हैं, कायम हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तन्हाई में अकेले हुए, ठीक है। तो इस सूरत में जब हक मेहर मुकर्रर नहीं और रुख्सती भी नहीं हुई तो फिर मुतय तलाक होगा, जो हमने इस आयत के शुरू में पढ़ा, अलल मूसी कदर हो और अलल मुक्तिरी कदर हो, ठीक है, अपनी हैसियत से देगा। एक चौथी सूरत भी होती है, हम इसको अब समझेंगे, हक मेहर मुकरर नहीं हुआ और रुख्सती हो गई। बात वाज़ेह, पहला जो केस था ना उसमें सिर्फ इसमें फर्क कितना है कि उसमें रुख्सती से पहले तलाक हो रही है, अब इसमें रुख्सती हो गई है तो मेहरे मिसल देना पड़ेगा। मेहरे मिसल क्या होता है, उस औरत के खानदान की बाकी औरतों को देखा जाएगा कि उनका कितना था, मतलब उसकी बहन का कितना मुकरर था, खाला का कितना था। हर कुछ खानदानों में आपको होता है कि एक ट्रेडिशनल भी होता है, कोई जेवर की सूरत में दे देता है, कोई पैसे की सूरत में दे देता है, तो इस सूरत में फिर उसको उसके करीब की रिश्तेदारों के मुताबिक दिया जाएगा। और बेहतरीन बात यह है कि हक मेहर पहले मुकरर हो जाए ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला आए तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। फरमाया वान ताफू अक्रबुल तकवा, और ये कि माफ कर दो तुम तो ये तो तकवा के करीब तर है, माफ कर दो, कोई बात नहीं, जाने दो, लेने दो, जो भी हालात हैं एक दूसरे से नरमी का मामला किया करो। वला तंसवुल फजल बैनकुम, आपस में फजल को भूला ना करो, एक दूसरे को छोड़ रहे हो, अच्छी यादों के साथ छोड़ो। हमारा देखिए मामला कब बिगड़ता है, जब हम बुरे दिनों में अच्छे दिनों को भूल जाते हैं। ये तो तलाक की बात आ गई है ना, घर में रहते हुए शौहर बीवी, जरा 19 से 20 की बात कर देना मर्द तो बीवी सब भूलने को तैयार है जो आज तक उसने किया। 10 चीजें मर्द दिला दें, सिर्फ एक का इनकार कर दें कि ये नहीं लेके दूंगा, तो बस बच्चियां इतनी जज्बाती और माँ बाप की तरफ से आदी होती हैं बात मुंह की पूरी करने की, वो नाराज हो जाती हैं, कहती मेरी बात ही नहीं मानते। भाई नहीं मानते तो आप उनकी मान लो, जो आप उनको कह रही हैं वो आप खुद कर लें। कभी मैं कहती हूँ कभी शादीशुदा जोड़े में लड़ाई की नौबत ना आए अगर ये असूल आप बांध ले के वला तन सवुल फदला बहना को। और लफ्जी जाहत में आप फजल को सुन चुके हैं, हक से ज्यादा देना। अगर आपका हक ये था कि आपको 100 रुपये दिए जाए तो आपको 110 दिए जाए, वो जो 10 है ना वो फजल है। तो हकूक ही एक दूसरे के इतने हैं तो कहाँ फिर उससे भी ज्यादा लेना। तो अल्लाह ताला कहते हैं गुस्से में हो, नागवारी में हो, परेशान हो, दुखी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एहसान करना ना भूलो। इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, याद रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह की नज़र से छुपा हुआ नहीं है, उसको खूब अच्छी तरह पता है। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि किसी मुआशरे में पाकीज़गी अगर आप चाहते हैं तो उसका राज निकाह में है, जायज और सीधा रास्ता यही है। लड़के और लड़की के इन्वॉल्व होने का, बातचीत करने का, एक दूसरे से राह और रस्म बढ़ाने का एक ही तरीका है कि निकाह कर लो। इस रास्ते में जो जो चीज़ें मुश्किलात पेश आ सकती थी, कुरान और सुन्नत में इनका बेहतरीन इलाज मौजूद है। और इसी निकाह से एक ऐसी मोहब्बत उठती है कि अल्लाह के नबी की हदीस बड़ी खूबसूरत है कि दो अजनबी यानी स्ट्रेंजर्स जिनको कोई जानता भी नहीं, निकाह से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो उनमें मोहब्बत पैदा करे। खून के रिश्तों से तो मोहब्बत है, क्यों ना हो? एक माँ के पेट से निकले माँ बच्चे में मोहब्बत क्यों ना हो? होती है ना, मामू और भांजी और भतीजी और फलाम फलाम में क्यों ना हो, क्योंकि खून है, कहीं नसब है, कहीं कुछ। ये कौन है? आप अपने शौहर का नाम लिख के सोचे, शादी से पहले शायद आप उनको जानती भी नहीं थी। बात तो भाई इतने स्ट्रेंज हालात में शादी होती है कि बिल्कुल फैमिली अलग होती है। हमारी एक स्टूडेंट थी, बहुत पुरानी, शुरू के बैच में थी, तो उनकी शादी जो थी वो एक ब्लैक मुस्लिम से हुई हुई थी, अफ्रीकी ब्रदर थे। और वो इतने दोनों मियाँ बीवी खुश थे, अल्लाह करे आज भी बहुत खुश होंगे, मैंने जब भी आखिरी दफ़ा मिला बहुत खुश बाश। और वो लड़की बिल्कुल ऐसे गोरी, देखने में बड़ी खूबसूरत शक्ल की, तो उसने कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं रखा। कहती शुरू से मेरे जिन में ये था कि मैंने न्यू मुस्लिम से करनी है, कन्वर्ट से करनी है, और अल्लाह ने इसबाब बिल्कुल वैसे बनाए, बहुत अच्छे ब्रदर है माशाल्लाह। तो बिल्कुल ख़ानदान अलग, बिरादरी अलग, अब खाने पीने भी अलग ही होंगे ना, लेकिन वो खुश रह जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मोहब्बत पैदा होती है निकाह के बाद। निकाह से पहले की मोहब्बत बिल्कुल झाग होता है और खुलता है बाद में जब असल जिंदगी शुरू होती है। फिर वही बातें लड़कियों के दिमागों में आती हैं कि शादी से पहले तो मुझे ये कहता था और उसके बाद ये, और लड़की ने भी पहले अपना आप बड़ा और तरह दिखाया होता है, शादी के बाद पता चलता है कि जब रोटी भी नहीं बनानी आती और घर ही इतना गंदा है और उसके अंदर कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। लेकिन इस रिश्ते में भी दरारें जब पड़े, जब साथ ना रह सको, तो इस्लाम उसका तरीका सिखा रहा है। इतनी डिटेल से तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है कुरान में जितनी डिटेल से तलाक के इश्यूज चल रहे हैं। कहाँ फिर कुछ दो, कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन करो। और जितना तकवा और परहेजगारी ज्यादा होगी उतना इंसान तलाक के मामलात में जब पड़ेगा तो वो अल्लाह को देखेगा, क्योंकि अल्लाह उसको देख रहा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख कर हम सबको अपनी फिक्र लगा दी, हम सब अपने ऊपर इसको लें। अब यहाँ दो आयतें और हैं, लेकिन इस वक्त यानी इद्दत तलाक और इस मौजू को मुकम्मल हुआ चंद मिनट आपको दूंगी सवाल के लिए। किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन जो इस पूरे मौजू को सुनने के बाद आया और अभी तक उसको उसका जवाब नहीं मिला, वो पूछ सकते हैं। जी आप। जी हक महर की अदायगी है, तो देखिए इंशाल्लाह इस पे डिटेल्स तो आएंगी सूरत निसा में, लेकिन अभी आपने पूछा है तो बात समझ लें कि हक महर की दो किस्में होती हैं, एक को कहते हैं मुअज्जल और दूसरे को कहते हैं गैर मुअज्जल। मुअज्जल क्या है? उजलत से या अजल से फौरन अदा कर दिया जाता है। और एक क्या है कि गैर मुअज्जल, तज़किरा कर दिया जाता है लेकिन उसको अदा नहीं किया जाता। दोनों तरह से जायज़ है, तज़किरा लाजमी है, ठीक है। असूली और अच्छी बात तो यह है कि मर्द बीवी के पास आने से पहले हक मेहर दे दे, और नेक मर्द ऐसे ही करते हैं। यकीन करें हैरत होती है ऐसे मामला पढ़ के और देख के, और जब आपके साथ खुद होते हैं कि कभी आपने अपने खानदानों में शादी के दिन लड़कों को कभी इस मौजू पे परेशान ही नहीं देखा कि मुझे दो मैंने क्या हक मेहर देने। बहुत देते हैं तो वो मुंह दिखाई का तोहफा देते हैं, कोई माँ बहन उसको कोई सेट कोई ऐसी चीज ला देती है कि ये दे दो, डायमंड के सेट तक दे दिए जाते हैं, लेकिन मर्दों और बच्चों को लड़कों को आपने हमने नहीं बताया होता कि हक मेहर भी देना है। लेकिन किसी दीनदार से अगर अल्लाह आपका वास्ता डाले, वो आपसे बात करेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले आपको वो चीज देंगे कि जो उनको लगता है कि ये मेरे जिम्मे है। अब आप रखें ना रखें ये आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल दे देना चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता तलाक की नौबत आ जाए तो वो ऐसे ही है। आगे आप वसीयत में भी पढ़ेंगे कि मर्द जब मरता है कोई औरत तो उसके ऊपर कर्ज जैसे होता है, उसके माल में सबसे पहले कर्ज अदा होगा। तो अगर बीवी का हक मेहर नहीं दिया हुआ तो वो मिसले कर्ज होगा। बीवी ना सिर्फ ये कि अपना हिस्सा पाएगी 1/8 या 1/4, बल्कि साथ उसको एक्स्ट्रा हक मेहर भी मिलेगा। ठीक है, बेहतर सूरत क्या है, कुछ औरत को देते हैं ना मर्द जेवरात, मिलते हैं ना ससुराल से, उसी में कोई चीज़ दे दें, फौरन अदा हो गया। भाई ये सारा जेवर है लेकिन ये सेट जो है ये तुम्हारे हक मेहर का है। बल्कि औरतें ज्यादा खुशी से ले लेती हैं, फिर उस सूरत में ये कि वो उनसे वापस नहीं ले सकते, दूसरा भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर वो खास तौर पे औरत रखे जो करे वो उसकी अपनी मर्जी है। जी और कोई सवाल? जी
बहन के पास है 4 एग्जाम है।
चौथी क्या है आप ही बताएं मुझे, पहली जो थी सबसे, जो आज के सबक में उसमें और चौथी में फर्क कितना है, कि उधर रुख्सती नहीं हुई थी इधर रुख्सती हो गई है। ठीक है, और हक मेहर मुकर्रर नहीं तो कितना दे दो उसकी फैमिली के जो मारूफ तरीका है उसका दे दो। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको इनकी बेहतरीन समझ दे और हम इन मामलात में क्यामत के दिन सुरखरू हो जाएं।
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير